लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि श्रम के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति परिपूर्णता हासिल करे, परिवारों का भरण पोषण प्रतिष्ठापूर्ण ढंग से हो सके तथा समाज को मानवीय बनाया जा सके। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हम अपने कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत पवित्र हृदय पर संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र दिल एक्सित नोस अर्थात उसने हमें प्रेम किया है की चर्चा सुन रहे हैं। हम दिल एक्सित नोस के चौथे अध्याय की चर्चा कर रहे हैं जिसका शीर्षक है एक प्रेम जो हमें अपने को पेय स्वरूप देता है। हमने अपने विगत प्रसारण में पवित्र हृदय के विषय में बालक यीशु के संत तेरेसा के विचारों का जिक्र करते हुए अपने विगत प्रसारण के अंतिम भाग में कहा कि तेरेसा ने अपनी ओर से विश्वास को सबसे बड़ा और उत्तम चढ़ावे के रूप में प्रस्तुत किया जो यीशु के पवित्र हृदय को प्रिय है। यीशु को क्या पसंद है? यह वह है कि वह मुझे अपने छोटेपन और दरिद्रता में प्रेम करते देखना चाहते हैं। उनके करुणा में मेरी एकमात्र आशा, यह मेरी एकमात्र संपत्ति है। यदि तुम खुशी का अनुभव करना चाहते हो, यदि तुम आनंद महसूस करना चाहते हो, दुख के प्रति आकर्षण चाहते हो, तो यह तुम्हारी सांत्वना है जिसे तुम खोज रहे हो। यह समझिए कि प्रेम का शिकार होने के लिए जो जितना कमजोर है, जिसमें इच्छाएं या गुण नहीं है, वह इस भस्म और रूपांतरित करने वाले प्रेम के लिए उतना ही अधिक उपयुक्त है। श्रोताओं, अपने बहुत सारे लेखों में तेरेसा उन आध्यात्मिकताओं के बारे में अपने संघर्ष का जिक्र करती हैं जो बहुत अधिक मानवीय प्रयास या व्यक्तिगत योग्यताओं पर केंद्रित थे, जिसमें त्याग और बहुत से ऐसे निश्चित कार्य संपादित किए जाते जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। उनके लिए योग्यता किसी चीज को करने और बहुत अधिक देने में निहित नहीं था, बल्कि यह प्राप्त करने में था। हम पुनः उनके इन गहरे अर्थपूर्ण लेखों को पढ़ें जहां वह इस बात पर जोर देती है और इस बात को एक सरल और त्वरित साधन स्वरूप प्रस्तुत करती है, जहां हम अपने को ईश्वर के हृदय द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। वह अपने धर्म बहन लियोने को लिखती हैं, मैं तुम्हें इस बात से सुनिश्चित करती हूं कि ईश्वर हमारे विश्वास से बेहतर हैं। वे हमारी एक नजर प्रेम की आह से संतुष्ट होते हैं, जैसे कि मेरे लिए मुझे श्रेष्ठता का अभ्यास करना सहज लगता है क्योंकि मैंने इसे समझा है। यह अपने में उनके हृदय के द्वारा ग्रहण किए जाने की बात है। हम एक छोटे बच्चे को देखें जो अपनी माता को थोड़ा नाराज करता है। यदि वह उसके पास आता, अपने छोटी बाहों को फैलाते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे चुंबन करें, मैं ऐसा फिर नहीं करूंगा, क्या माता उसे अपने गले से नहीं लगाएगी और उसके बचकाने गलती को नहीं भूलेगी? यद्यपि वह जानती है उसका छोटा बच्चा दूसरी बार फिर उसे गलती को करेगा, लेकिन यह उसे बुरा नहीं लगता है। यदि वह अपनी माता को गले लगाता तो वह उसे सजा नहीं देती है। श्रोताओं, वैसे ही फादर एडोल्फ रैलैंड को लिखे अपने पत्र में वह कहती हैं, मेरे कार्य करने का तरीका प्रेम और विश्वास है। मैं उन आत्माओं को नहीं समझती जो अपने एक कोमल मित्र से डरते हैं, कभी कभी जब मैं कुछ आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ रही होती जिसमें हजारों बाधाओं के माध्यम से पूर्णता को व्यक्त की गई है, तो मेरा छोटा मन जल्दी ही थक जाता है, तो मैं उस ज्ञानवर्धक पुस्तिका को बंद कर देती हूँ जो मेरा सिर फोड़ता और हृदय को शुष्क बना देती है, और इस तरह मैं पवित्र धर्म ग्रंथ को अपने लिए उठा लेती हूँ। तब सारी चीजें मुझे प्रकाशमान लगती हैं। एक शब्द मेरी आत्मा के लिए अनंत क्षितिज को उजागर करता है। पूर्णता मुझे सरल लगती है। मैं देखती हूँ कि अपनी शून्यता को पहचानना और खुद को एक बच्चे की तरह ईश्वर की बाहों में छोड़ देना ही पर्याप्त है। श्रोताओं, एक दूसरे पत्र में वह एक अभिभावक के द्वारा प्रकट किए गए प्रेम का जिक्र करती हैं। मैं यह नहीं मानता कि एक पिता का हृदय अपने बच्चे के पुत्रवत आत्मविश्वास का विरोध कर सकता है जिसकी ईमानदारी और प्रेम को वह जानता है। वह यद्यपि इस बात का अनुभव करता है कि उसका बेटा एक से अधिक बार उसे गलती का शिकार होगा, लेकिन वह उसे सदैव क्षमा करने के लिए तैयार रहता है यदि उसका बेटा उसे हृदय में वहन करता है। श्रोताओं, हमने अपने पिछले प्रसारण में इस बात की चर्चा की कि कैसे संत क्लाउदे देला कोलंबियारे ने संत मेरी मार्गरेट के आध्यात्मिक अनुभव को आध्यात्मिक अभ्यास के उद्देश्य से जोड़ा। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि मेरा मानना है यीशु समाज के इतिहास में पवित्र हृदय को कुछ संक्षिप्त शब्दों में वर्णित करना उचित है। यीशु समाज की आध्यात्मिकता में हम सदैव एक बात की व्याख्या को पाते हैं, यीशु ख्रिस्त का आंतरिक ज्ञान जिससे हम उसे प्रेम कर सकें और निकटता से उनका अनुसरण कर सकें। संत इग्नासियुस हमें अपनी आध्यात्मिक साधना में सुसमाचार के समक्ष प्रस्तुत होने को कहते हैं, जो हमें बतलाता है ख्रिस्त के हृदय को भाले से बेधित किया गया जिसमें से लोहू और पानी बह निकला। जब आध्यात्मिक साधना करने वाला क्रूसित यीशु के बेधित बगल पर चिंतन करता है, तो संत इग्नासियुस उस बात की सलाह देते हैं कि वह यीशु के हृदय में प्रवेश करे। इस भांति यह हमारे लिए अपने हृदय को विस्तृत करने का एक मार्ग बनता है जो हमारे लिए उनकी ओर से आता है जो हमारे लिए स्नेह के स्वामी हैं। ये वाक्य संत पीटर फाबिर के हैं, जिसे उन्होंने अपने एक पत्र में इग्नासियुस को लिखा। पुरोहित जुआन अल्फोंसो पोलांको इस कथन का जिक्र संत इग्नासियुस की जीवनी में करते हैं। कार्डिनल गास्परो कोंतारिनी ने अनुभव किया कि संत इग्नासियुस का मिलन स्नेह के एक स्वामी से हुआ था। संत इग्नासियुस आध्यात्मिक साधना में वार्ता का सुझाव देते हैं। वो अपने में हृदय के प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि हम उसमें सुसमाचार के संदेश को हृदय से महसूस करते हैं और उसका स्वाद लेते हैं तथा प्रभु के इस विषय में बातचीत करते हैं। संत इग्नासियुस हमें कहते हैं कि हम अपनी चिंताओं को यीशु के संग साझा कर सकते और अपने लिए उनसे सलाह की मांग कर सकते हैं। वह जो आध्यात्मिक साधना करता है, वह अपने लिए सहज ही हृदय से हृदय में यीशु संग वार्ता कर सकता है। श्रोताओं, संत इग्नासियुस अपने चिंतन को क्रूस के नीचे चरमोत्कर्ष पर ले चलते हैं और साधक को क्रूस पर चढ़े प्रभु से अति स्नेह पूर्वक सवाल करने को आमंत्रित करते हैं, वैसे ही जैसा कि एक मित्र दूसरे से, एक सेवक अपने स्वामी से पूछता है उसे क्या करने की जरूरत है। आध्यात्मिक साधना की चरम को हम प्रेम प्राप्ति हेतु चिंतन में समाप्त होता देखते हैं, जो कृतज्ञता के भाव प्रकट करने और अपनी स्मृति, समझ और इच्छा को यीशु के हृदय को अर्पित करने के लिए प्रेरित करता है, जो हर चीजों का स्रोत और उद्गम है। यह आंतरिक चिंतन हमारी समझ और प्रयास का फल नहीं है, बल्कि इसे एक उपहार के रूप में मांगा जाना चाहिए। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र दिल एक्सित नोस की चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
परमेश्वर, धन्य है तेरा काम, धन्य है तेरा नाम, धन्य है वो पिता ईश्वर, धन्य पुत्र परमेश्वर, धन्य है तेरा काम, धन्य है तेरा नाम।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें ने नेपल्स के फुटबॉल क्लब के सदस्यों से मुलाकात की, जो अपनी चौथी लीग जीत का जश्न मना रहे हैं, और इस बात पर जोर दिया कि यह टीम है, न कि व्यक्तिगत खिलाड़ी, जो चैंपियनशिप जीतती है। पोप लियो ने अपने संदेश की शुरुआत टीम को उनकी जीत के लिए बधाई देते हुए की, जिससे उन्होंने नेपल्स के सभी लोगों के लिए एक बड़ा उत्सव कहा। सोमवार 26 मई को नेपल्स की विजय परेड के लिए हजारों प्रशंसक शहर की सड़कों पर उमड़ पड़े। पोप ने क्लब को बताया कि अतीत में जब कोई टीम ट्रॉफी जीतती थी तो व्यक्तिगत खिलाड़ियों के प्रदर्शन और कौशल पर ध्यान दिया जाता था। उन्होंने कहा, हालांकि आज हम मानते हैं कि यह टीम है जो चैंपियनशिप जीतती है, इसमें खिलाड़ी, प्रबंधक और उनके कर्मचारी और खेल क्लब शामिल होते हैं। पोप लियो ने अपने संबोधन का समापन टीम के सदस्यों को उनकी मुलाकात के लिए धन्यवाद देते हुए, उनकी जीत पर उन्हें फिर से बधाई देकर और टीम के सदस्यों एवं उनके परिवारों को अपना आशीर्वाद देकर किया। अफ्रीकी महाद्वीप के तीर्थयात्री एवं प्रतिनिधि जब सोमवार को संत पेत्रुस महागिरजाघर में ख्रिस्त त्याग में भाग ले रहे थे तो पोप लियो 14वें वहां अचानक पहुंच गए और सभी को आमंत्रित किया कि वे अपने विश्वास को दुनिया में आशा के प्रतीक के रूप में अपनाएं। सोमवार को संत पेत्रुस महागिरजाघर में अफ्रीकी देशों के उन राजदूतों के लिए ख्रिस्त त्याग आयोजित की गई थी जो परमतम पीठ से मान्यता प्राप्त हैं, और वे लोग भी थे जो जयंती तीर्थयात्रा में भाग ले रहे हैं। 62वें अफ्रीका दिवस के एक दिन बाद आयोजित ख्रिस्त त्याग के अंत में पोप लियो 14वें अचानक वहां उपस्थित हो गए और प्रतिनिधि मंडलों का अभिवादन किया तथा उन्हें प्रोत्साहन दिया। पोप ने अंग्रेजी में अपनी टिप्पणी में कहा कि 2025 का पवित्र वर्ष हम सभी को आशा की तलाश करने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन साथ ही आशा के संकेत बनने के लिए भी। उन्होंने कहा कि यह कितना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति खुद को आज की दुनिया में आशा का संकेत बनाने के लिए ईश्वर द्वारा बुलाया गया महसूस करे। उन्होंने आगे कहा कि विश्वास ख्रिस्तियों को शक्ति देती है। उन्होंने कहा कि हमारा विश्वास हमें हमारे जीवन में यीशु मसीह के प्रकाश को देखने और यह समझने में सक्षम बनाता है कि हमारे विश्वास को जीना कितना महत्वपूर्ण है, न केवल रविवार को, न केवल तीर्थयात्रा के दौरान, बल्कि हर दिन। पोप लियो ने कहा कि विश्वास हमें उस आशा से भरने की अनुमति देता है जो केवल प्रभु यीशु ही हमें दे सकते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि हम सभी भाई बहनों के रूप में एकजुट होकर अपने प्रभु ईश्वर की स्तुति करते रहेंगे और पहचानेंगे कि हमारे पास जो कुछ है और हम जो कुछ भी हैं वह ईश्वर की ओर से एक वरदान है, और उन वरदानों को हम दूसरों की सेवा में लगाएंगे। पोप ने इसके बाद राजदूतों और तीर्थयात्रियों को यीशु ख्रिस्त में अपने विश्वास को जीने के लिए धन्यवाद दिया। कंबोडिया के नोम पिनाह में 8वें बौद्ध ख्रिस्त संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए अंतरधार्मिक वार्ता के लिए गठित परमधम पीठे परिषद के प्रीफेक्ट कार्डिनल जॉर्ज गुआकार्ट ने विश्वासियों से अनुरोध किया कि वे मेल मिलाप एवं लचीलेपन के माध्यम से शांति स्थापित करने के लिए अपनी अपनी धार्मिक परंपराओं को आगे बढ़ाएं। धार्मिक नेता, विद्वान एवं बौद्ध तथा ख्रिस्त समुदायों के प्रतिनिधि इस सप्ताह कंबोडिया में 8वें बौद्ध ख्रिस्त संगोष्ठी के लिए एकत्रित हैं। यह संगोष्ठी 27 से 29 मई को नोम पेनाह में कार्तिक प्रेरित केंद्र में आयोजित है, जिसकी विषय वस्तु है बौद्ध और ख्रिस्त मेल मिलाप और लचीलेपन के माध्यम से शांति के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने पोप लियो 14वें के शब्दों को दोहराते हुए अपना संदेश समाप्त किया। उन्होंने कहा, यदि हम सहमत हैं और वैचारिक एवं राजनीतिक शर्तों से मुक्त हैं, तो हम युद्ध के लिए नहीं और शांति के लिए हाँ कहने में प्रभावी हो सकते हैं। हथियारों की दौड़ के लिए नहीं और निरस्त्रीकरण के लिए हाँ। एक ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए नहीं जो लोगों और पृथ्वी को गरीब बनाती है, बल्कि समग्र विकास के लिए हाँ कहेंगे। वैटिकन के सुसमाचार प्रचार विभाग ने विश्व पर्यटन दिवस 2025 के लिए अपना संदेश जारी किया, जिसकी विषय वस्तु है पर्यटन और सतत परिवर्तन, जिसमें पर्यावरण, पर्यटकों और श्रमिकों की सुरक्षा करने तथा ख्रिस्ती आशा प्रदान करने का आह्वान किया गया है। संदेश में कहा गया है कि पर्यटन को न्याय एवं सृष्टि के प्रति सम्मान से चिन्हित किया जाना चाहिए और इस जयंती वर्ष के लिए पर्यटन में काम करने वालों को ख्रिस्ती आशा व्यक्त करनी चाहिए। विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को पर्यटन एवं सतत परिवर्तन विषय पर मनाया जाता है। होप प्रोजेक्ट को गोवा में जोखिमग्रस्त युवाओं, दुर्व्यवहार से पीड़ित लोगों तथा यौन दुराचार के शिकार व्यक्तियों के साथ काम करने के लिए भाईचारे की अर्थव्यवस्था हेतु असीसी के सैन फ्रांसिस एवं कार्लो अकुतिस पुरस्कार प्राप्त हुआ है। रविवार 25 मई को भाईचारे की अर्थव्यवस्था हेतु असीसी के सैन फ्रांसिस एवं कार्लो अकुतिस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से 2025 असीसी में संत मरिया मेजर महागिरजा घर में HOPI परियोजना को प्रदान किया गया। परियोजना होप का अर्थ है चंगाई, अवसर, सुरक्षा एवं सशक्तिकरण। इसका केंद्र गोवा में है। यह स्थानीय कारितास की पहल से विकसित हुआ है, जिसने चाइल्ड लाइन नामक हेल्पलाइन कार्यक्रम का नेतृत्व किया था। यह कार्यक्रम जोखिम में पड़े बच्चों, विशेष रूप से सबसे गरीब एवं सबसे उपेक्षित गांवों के बच्चों के बचाव एवं पुनर्वास के लिए समर्पित है। 2023 में गोवा सरकार ने कार्यक्रम का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। जब गंभीर विसंगतियां सामने आईं, तो 7 युवा लोगों ने, जो पहले से ही कारितास गोवा के बधिर अंधे व्यक्तियों के लिए काम कर रहे थे, इन मुद्दों का सामना करने वाले एक परियोजना प्रस्तुत करने के लिए मिलकर काम किया और इसके साथ ही प्रोजेक्ट होप का जन्म हुआ। इसका लक्ष्य है जोखिम में पड़े युवाओं, जिसमें 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग और दुर्व्यवहार के शिकार या यौन दुराचार से पीड़ित लोगों का समर्थन करना, जिसमें से कुछ बधिर और अंधे हैं। उदाहरण के लिए एक कॉल सेंटर है जहां युवा मदद और समर्थन के लिए फोन कर सकते हैं। गोवा माध्यम प्रांत के फादर सैन फोर्ट रोड्रिक्स ने असीसी में पुरस्कार ग्रहण किया और 50,000 यूरो के पुरस्कार से लाभान्वित होने वाले लगभग 1,000 युवाओं को धन्यवाद दिया। विजेताओं को एक स्कार्फ भी दिया गया, जिस पर भौतिक दुनिया को त्यागने के संकेत के रूप में सैन फ्रांसिस की अपने कपड़े उतारने की तस्वीर अंकित है। फादर रोड्रिक्स ने बतलाया कि आशा शब्द कैसे एक शब्द मात्र से बढ़कर है। उन्होंने कहा, यह एक ऐसा आंदोलन है जो भाईचारे की नई अर्थव्यवस्था के जरिए कमजोर लोगों को उम्मीद देता है, जिसमें व्यापार जगत को शामिल करके एक ऐसी पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन किया जाता है जो गरिमा और स्वतंत्रता का भविष्य बनाता है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।